जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभा गिरिवर धारी। गोपी जना वल्लभा गिरिवर धारी। नवल्लभा गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। सब लोग नहीं बोल रहे हैं निश्चित रूप से, आपको पता नहीं है कि हमारा कितना भाग्य है कि आप लोग इतने शांति से यहाँ पर बैठे हैं और बैठ सक रहे हैं। इसके पीछे बहुत ज़्यादा भक्तों ने मेहनत की है। अभी मैं खुलेआम ये सब नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको इतना ही बताना ज़रूरी है कि जैसे आनंद से और शांति से आप साक्षी गोपाल जी का दर्शन किए और शांति से यहाँ पर आप बैठे हो, ये परम 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 भाग्य की बात है। और इसके पीछे बहुत भक्तों ने बहुत दिल से मेहनत की है ताकि आपको यहाँ पर आनंद का अनुभव प्राप्त हो। इसलिए कृतज्ञता से इन ग्रैटिट्यूड सब लोग भगवान का नाम पुकारिए। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। एवरीबॉडी जय राधा माधवा कुंज बिहारी। ऊपर ही बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा जोरदार कीर्तन होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। सब लोग गोपाल को पुकारिए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जय गोपाल जय गोपाल, जय राधावर दीन दयाल, अभी भी सब लोग नहीं गा रहे हैं। जय गोपाल जय गोपाल, जय राधावर दीन दयाल, जय राधावर दीन दयाल, जय राधावर दीन दयाल, जय राधावर दीन दयाल, राधे राधे गोविंद बोलो रे, राधे राधे गोपाल बोलो रे, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो रे। जय गोपाल जय राधावर दीन दयाल, राधे राधे गोविंद बोलो रे, राधे राधे गोविंद बोलो रे, राधे राधे गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे। जय गोपाल जय राधावर दीन दयाल, जय गोपाल जय राधावर दीन दयाल, जय राधावर दीन दयाल, जय राधावर दीन दयाल, जय गोपाल जय राधावर दीन दयाल, बोलो गोपाल जब हम लोग हृदय से पुकारते हैं ना भगवान को, तभी भगवान सुनते हैं। हृदय से पुकारना चाहिए। हम लोग सब धाम में आए हैं, यहां पर एक बार भगवान को पुकारने का मतलब होता है लाखों बार आप पुकार रहे हैं। वो कैसे बताया ना, वो गुंडीचा मंदिर में एक बार दर्शन लेंगे तो 10,000 दर्शन लेने के बराबर है नीलाचल में दर्शन देने से। तो ऐसा भगवान क्यों करते हैं? क्योंकि उनको मालूम है प्रायेण अल्पायुषा कलावस्मिन युगे जनहा मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य युपद्रुतहा। हम स्वरूप लोग मंद भाग्य हैं और मंद है मतलब क्या है, डल हेडेड, और हमारा कैसे इल फॉर्चून मिसफॉर्चुनेट। रघुनाथ प्रभु की जय। तो ये सब हमारी स्थिति को देखते हुए भगवान ये सब डिस्काउंट और कंसेशन देते रहते हैं कि ले लो और तर जाओ। और धाम में वही आदमी आता है, वही व्यक्ति आता है, वही जीव पहुंचता है जो भगवान की कृपा से संपृक्त है। तो आप लोग धाम में तो आए गए हो, इसका मतलब भगवान की कृपा आप पर है और लेकर ही आप अंदर आए हो। उसके बिना तो यहां पर कोई भी जीव, कोई भी महाराज नहीं आ सकता है। इसलिए कृतज्ञता से हमको यहां पर आने के बाद में उत्साह से भगवान का नाम लेना चाहिए। कृतज्ञता क्यों? क्योंकि हमारी योग्यता नहीं है लेकिन फिर भी हमको मिला है, और कृतज्ञता है इसलिए उत्साह से पुकारना चाहिए, गोपाल। जो प्रेम से पुकारते हैं उनके अधीन हो जाते हैं भगवान, उनके वश में हो जाते हैं। जगन्नाथपुरी ऐसा भगवान का धाम है, बड़ा विचित्र धाम है। इसमें दो परब्रह्म एक साथ रहते हैं और लीला करते हैं, स्वयं श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ जी के रूप में जो कृष्ण के विरह में है, राधा रानी के विरह में, सॉरी ब्रजवासियों के विरह में है, और गौरांग महाप्रभु जो कृष्ण के विरह में है। ऐसा अनोखा अद्भुत रहस्य कहीं नहीं है, और ये रहस्य समझना भी बहुत मुश्किल है। वो हमारे दयालु प्रभुपाद जी महाराज हैं, हमारे आचार्य वृंद हैं, इनकी वजह से हमको समझ में आ रहा है। तो बचपन में तो हम लोग पढ़ते थे कि चैतन्य महाप्रभु एक बंगाल के संत थे। कितना बड़ा घोटाला है पता है आपको? भगवान को एक संत बोलना, खाली एक तरह से संत भगवान के ऊपर होता है, लेकिन भगवान को संत बोलना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन इतिहास के किताब में लिखा हुआ है कि वो जो पागल होकर रोड पे कीर्तन करते थे ऐसे एक संत बंगाल में हुए। लेकिन केवल गुरु महाराज प्रभुपाद जी की कृपा से ही हमको ये पता चल रहा है कि वो संत नहीं है, वो भगवान है, स्वयं साक्षात भगवान है वो। और शास्त्र में उसका वर्णन भी नहीं दिया है, क्योंकि वो तो भगवान के रूप में तीन ही युग में आते हैं। ये युग में भगवान बनकर नहीं आए ना, वो छन्न अवतार में आए। तो इसलिए ये सारी रहस्य की बातें हम सबके लिए प्रकाशित हो रही है, ये हमारा परम भाग्य है। जितना भी कृतज्ञता व्यक्त करें उतना कम है इसके लिए, जितना भी हृदय से पुकारे उतना कम है, क्योंकि अनन्य कृपा है। इसके लिए कोई योग्यता नहीं हमारे अंदर, कोई योग्यता का विचार ही नहीं है इसके अंदर। तो इसलिए सब लोग पुकारिए, गोपाल, हे गोपाल। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि जब हम अकेले पुकारते हैं तो हमको भी हजारों लाखों गुना लाभ होता है, लेकिन जब 1,000 भक्त साथ में पुकार रहे हैं तो 1,000 भक्तों का संघ का और उनके पुकारने का लाभ भी हमको मिल रहा है, हर एक व्यक्ति को मिल रहा है, क्योंकि आप एक हो और आपके साथ में 1,000 लोग हैं। ऐसा परम भाग्य सब जगह नहीं होता है। बताइए कितनी बार हम साल में ऐसे भक्तों के संघ में एक साथ रहते हैं, कितनी बार? बहुत कम बार। इसलिए कहा गया दुर्लभ मानव जन्म सत्संग। भगवान के भक्तों का संघ जो है ना, वो भक्त बनने के बाद भी दुर्लभ है। वो अपने आप नहीं, उसके लिए योजना बनाना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, कुछ टाइम निकालना पड़ता है उसके लिए, इच्छा संकल्प होना चाहिए उसके लिए। इसलिए सब लोग पुकारिए, थैंक यू। तो अभी हम भगवान श्री का साक्षी गोपाल के अनन्य कृपा से उनके धाम में बैठे हुए हैं। वैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पूरी भुवनेश्वर ट्रेन के बीच में ये स्टेशन आता है साक्षी गोपाल, स्टेशन का नाम भी साक्षी गोपाल है। और बड़ी अद्भुत लीला है भगवान की, प्रतिमा नाही तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ऐसे भगवान कहते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं बताया था। और इसका ये प्रमाण है कहाँ के भगवान कहाँ खड़े हैं, कहाँ घूम रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है। और एक विशेष बात हमको समझ में आनी चाहिए कि हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं वो सभी आचार्यों ने भगवान से संवाद किया है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये सबके साथ साक्षात भगवान संवाद करते थे। अद्वैत आचार्य के सामने मदन गोपाल जी प्रकट हुए थे, वो भी संवाद करते हैं, कभी विग्रह के रूप में तो कभी साक्षात। मदन मोहन जी के मंदिर में जो कथा लीला हुई थी मदन गोपाल जी की, तभी वो नीचे खेल रहे थे, मूर्ति रूप में है लेकिन मूर्ति साक्षात होकर ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं। तो रामचंद्र कपूर को क्या बताते हैं कि आप ऊपर जाइए, ऊपर बहुत महात्मा बैठे हैं, उनकी कृपा से आपके जहाज जो है वो बच सकता है। ऊपर जाके महात्मा क्या बताते हैं, सनातन जी गोस्वामी महाराज, वो मदन गोपाल की कृपा से आपका जहाज बच सकता है। इस तरह से संवाद कर रहे हैं वो। गोविंद देव रूप गोस्वामी से संवाद कर रहे हैं, उनके हाथ से बनाया हुआ बाटी और भोग खा रहे हैं। तो जिनके लिए श्रद्धा नहीं है जिनके मन में, उनके लिए पत्थर लकड़ी कपड़ा पेंटिंग वो सब कुछ है, लेकिन जिनके लिए श्रद्धा है उनके लिए वो साक्षात है। आप भी अगर श्रद्धा से और प्रेम से भगवान का दर्शन करेंगे तो रोज आपको भगवान अलग भाव में दर्शन देंगे। कभी आपको नाराज दिखेंगे, कभी आपको बहुत खुश दिखेंगे, कभी बहुत गंभीर दिखेंगे, कभी कुछ मैसेज देंगे आपको, कभी आप प्रार्थना करेंगे तो आपको जवाब देंगे। ये सब हकीकत है भक्तों के जीवन में, ये कोई चमत्कार नहीं है, रोज की कथा है, केवल श्रद्धा होना चाहिए बस। तो यहाँ की कथा भी ऐसी ही है, हमारे श्रद्धा को अनंत बार गुणित करने के लिए यहाँ की लीला है। प्रभुपाद जी का एक प्रवचन है, उसके अंदर उन्होंने बताया है कि भगवान तो क्या कहते हैं ना, अकल्पनीय है, अचिंत्य है, उनके बारे में हम, उनको कहते हैं ना लोकल भाषा में, उनको पकड़ नहीं सकते हम, वो किसी की पकड़ में नहीं आते, वो दुर्लभ हैं, किसी को प्राप्त नहीं हो सकते वो, क्योंकि उनके वो उनके अनंत गुण है, अनंत उनका ऐश्वर्य है। तो ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को हम पकड़ नहीं सकते हैं। लेकिन वही व्यक्ति बड़ी दया से हमारे दृष्टि की जो सीमा है उसके अंदर विग्रह के रूप में प्रकट होकर दर्शन देते हैं। इंग्लिश में प्रभुपाद कहते हैं कि लॉर्ड कृष्णा हैज अपियर्ड विद इन द लिमिट्स ऑफ आवर लिमिटेड विजन इन द फॉर्म ऑफ डीटी, जबकि वो हमारे जो दृष्टि पथ है हमारा, जो हमारा विजन का सीमा है, उसके अंदर वो नहीं आ सकते, क्योंकि हमारी जो दृष्टि है वो भौतिक है। अब यहाँ से वहाँ तक देख सकते हैं, ये दीवार के पीछे क्या है देख नहीं सकते हैं, वैसे हमारी दृष्टि बहुत सीमित है और भौतिक दृष्टि है हमारी, मटेरियल विजन। और भगवान दिव्य हैं तो मटेरियल विजन भौतिक दृष्टि के सीमा के दायरे में वो नहीं आ सकते हैं। लेकिन वो जो तब जब वो तय करते हैं कि मुझे ऐसे सीमित भौतिक दृष्टि वाले लोगों को भी दर्शन देना है, अनंत दया से सोचते हैं, तब वो हमारे भौतिक दृष्टि के सीमा के अंदर डीटी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। कितनी कृपा है भगवान की, देखो। अगर वो चाहते तो हमको सबको दुर्लभ ही बना के रखते अपने आप को। जैसे मेरे घर में मेरे गुरु हमारे गुरुदेव आए थे बेटी का नाम रखने के लिए, एक हफ्ते की बेबी थी, उसके कान में नाम दिया और बाद में बताया कि जब बड़ी हो जाएगी तो बताएगी नाम क्या है। मतलब क्या हुआ, नो चांस टू नो, है ना। मैं आपको एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, थोड़ा आपको समझ में आ जाए कि भगवान की कृपा कैसी है। तो कान में जाकर नाम दिया और बाद में हमने पूछा क्या महाराज क्या नाम दिया, तो महाराज ने कहा जब बेटी बड़ी हो जाएगी तो बताएगी। लेकिन बाद में उन्होंने बताया कुछ देर के बाद, अगर वो नहीं चाहते तो नहीं बताते, लेकिन उन्होंने बताया इसलिए हमको पता चला कि हमारे बेटे का नाम क्या रखा है। उस तरह से भगवान ने अगर तय किया होता कि मुझे इस भौतिक दुनिया के लोगों के भौतिक दृष्टि के सीमा के अंदर नहीं आना है, मुझे अधोक्षज बनकर ही रहना है, हमारे अक्ष यानी नजरों के परे बियॉन्ड अवर विजन, तो वो रह सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने आप को अर्च विग्रह के रूप में प्रकट किया है, और जिन लोगों की हमारे जैसे लोगों की योग्यता नहीं है साक्षात उनके साथ संबंध करने का, उनको भी उनके साथ संबंध करने का मौका दिया है। कभी कभी हम लोग ना बहुत सब कृपा होती है ना, तो हम लोग ऐसा एकदम उसको क्या कहते हैं उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड, उसको ज्यादा कीमत नहीं देते। जैसे राजा के घर में रोज लड्डू होते हैं, रोज पंच पकवान होते हैं, तो हमारे मराठी में एक कहावत है राजाला दिवाली का है माहित, मतलब राजा को दिवाली कैसे मालूम पड़ेगी कब दिवाली है, रोज ही पंच पकवान खाते हैं, रोज ही चकली करंजी लड्डू खाते रहते हैं, तो दिवाली कभी आई कभी गई कैसे मालूम पड़ेगा उनको। तो उसी तरह से हम पर भी बहुत कृपा है भगवान की। एक तो भगवान का नाम मिला है, ये अनंत कृपा है, और वो नाम देने के लिए भगवान के भक्तों का संग मिला है जिनके वजह से ये नाम प्राप्त हुआ है। धाम की यात्रा हो रही है, हाँ तो हम लोग अकेले आएंगे तो क्या देखेगा आपको, यहाँ पर कुछ समझेगा क्या। लेकिन संत लोग समझाते हैं, गुरु महाराज धाम में बैठकर पूरा लीला वर्णन कर रहे हैं, एक एक चीज जो पता भी थी वो भी नए से पता चल रही है, पहले इतनी पता थी तो अभी इतनी पता चल रही है, और अगली बार आएंगे तो और पता चलेगा वही चीज, और गहराई में और विस्तार में वही चीज जो आपको पहले समझ में आई है वो और अधिक रूप में आपको समझ में आएगी। तो इतनी सारी भर भर के कृपा होती है ना, तो हम लोग थोड़ा लैक्स हो जाते हैं। आप जाके मिलिए जो लोग विदेश में रहते हैं, चाइना के लोगों को मिलिए आप, फिर आपको पता चलेगा कि आतुरता क्या होती है। वहां पर ना मंदिर है, ना भक्तों का संग आप ओपनली कर सकते हैं, ना धोती कुर्ता पहन सकते हैं, ना तिलक लगा सकते हैं, ना कंठी माला पहन सकते हैं, ना स्क्रिप्चर वहां पर भेज सकते हैं आप, जो भी भेजना वो स्मगलिंग करके भेजना पड़ता है। इसमें से कुछ भी आप काम करोगे तो आप जेल में जा सकते हो लाइफ टाइम के लिए। और ऐसे लोग एक बार बरसाने में आज यात्रा करने के लिए आए थे। मैं आपको बताता हूं कि ईगरनेस का मतलब क्या होता है, लौल्य आतुरता का मतलब क्या होता है। हर एक जगह पर जहां जहां कथा की वहां पर हर एक चाइनीज डिवोटी रो रहा था, हर एक व्यक्ति। ऐसा अद्भुत अनुभव मुझे आज तक के अनंत कथा में किधर भी नहीं आया। हर एक व्यक्ति चाइनीज डिवोटी रो रहा था उसमें, क्योंकि उनको पता था कि हमारी ये पहली और आखिरी यात्रा है। बहुत गरीब लोग थे वो, जैसे मुसलमान लोग हज करते ना इकट्ठा करके जिंदगी भर पैसा, और एक ही बार हज की यात्रा करते हैं, पता है उनको दोबारा नहीं जा सकते वो, ऐसे लोग थे वो। धोती कुर्ता भी पहली बार पहने हैं और आखिरी बार पहन रहे हैं, जब जाएंगे एयरपोर्ट तो सब छोड़ के जाना है उनको यहां से, और फिर वही अंडरग्राउंड स्मगलिंग के रूप में भक्ति करनी है। तब पता चलता है कि हमको क्या प्राप्त हुआ है और हम लोगों को कितना कृतज्ञ होना चाहिए कि हम खुले आम भगवान का नाम ले सकते हैं। हाँ आप देखो सब लोग सर मुंडवा के चोटी रख के घूम रहे हैं, ऐसा चाइना में नहीं कर सकते, रशिया में भी पहले नहीं कर सकते थे, अभी अभी भगवान की दया से खुल गया सब। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम लोगों को जो प्राप्त है उसका कीमत उसकी वैल्यू दिल में बनाए रखना चाहिए, ताकि हम भूले नहीं कि हमको क्या प्राप्त हुआ है। जैसे ये बहुत धनी व्यक्ति होता है ना, तो समझो 1,000-2,000 रुपए के नोट जेब में लेके आता है, तो निकालते हुए इधर निकाल दो नोट गिर जाते हैं, कभी कभी ऐसा निकालते निकालते वो कभी गिरता समझ में नहीं आता है, भीड़ में कभी कुछ निकालना है। लेकिन जिसकी तनख्वाह महीने में 1,000 रुपये है समझो, वो कैसे निकालेगा उसको जेब में से, ऐसे देखेगा दो बार इधर को है ना कोई, आराम से पूरा पांचों उंगली ऐसा घुमा के फिर बीच में हाथ डालेगा, फिर उसको निकालेगा और गिनेगा 1, 2, 4, 5 रुपए और धीरे धीरे खर्च करेगा उसको। वैसे हमारी अवस्था, हम लोग वो धनी व्यक्ति की तरह है, अनंत कृपा हुई हमारे ऊपर भगवान की, इसलिए हम कभी कभी भक्त लोगों को मिलते हैं तो भी ऐसे चले जाते हैं, हरि बोल नहीं करते। मैं जब सऊदी अरब में गया था ना रहने के लिए, तो एक भक्त मुझे अनजान ड्रेस में, ऐसे भक्त नहीं, भक्त का ड्रेस में नहीं, ऐसे ही एक भक्त मुझे बस स्टॉप पर मिला था, तो मैं उसको ऐसे मिला था, उसको ऐसे मिला था, क्या बताऊं आपको। तब मुझे समझ में आया कि यहाँ पर तो भक्तों का सागर है और वहाँ पर एक भक्त भी नहीं मिल रहा है, और वो मिलने पर उसका महात्म्य पता चलता है कि भक्त है व्यक्ति, उसके साथ में मेरे दिल की बात दिल की लैंग्वेज में कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे भक्त है, इसका मतलब उनकी कीमत कम है, ऐसा नहीं है। हृदय में वो भाव होना चाहिए कृतज्ञता का कि हमारे ऊपर बहुत कृपा है भगवान की। तो साक्षी गोपाल जी का जो ये विग्रह है, ये वज्रनाभ ने बनाया था, वज्रनाभ ने ये साक्षी गोपाल का विग्रह बनाया था। ये मूल वृंदावन के भगवान हैं। आज भी आप जाएंगे राधा गोविंद जी के मंदिर के पास, राधा गोविंद जी के मंदिर के आगे जाएंगे ना, तो प्राचीन पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर ये मंदिर का जो अवशेष मात्र है वो सब, अभी उधर कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके जो अवशेष मात्र मंदिर वहाँ पर है, जहाँ पर साक्षी गोपाल जी पहले विराजमान थे। 5,000 साल पहले जब भगवान ने यहाँ से अंतर्धान होने का निर्णय किया, तो वज्रनाभ को ब्रज का राजा बनाया, परीक्षित को विश्व का राजा बनाया। परीक्षित के महाराज के निर्देश में और नियंत्रण में उन्होंने ब्रज जो है वो वज्रनाभ को संभाल दिया और कहा कि आप मेरी सारी लीलाओं की स्थली को प्रकट करो। उसमें उन्होंने राधा मदन मोहन जी, गोविंद जी, गोपीनाथ जी के विग्रह बनाए अपने हाथों से, और साक्षी गोपाल का विग्रह भी बनाया, नंदगांव का विग्रह भी बनाया, बरसाने का विग्रह भी बनाया। उनका समाधि वो करैला गांव में है, यहाँ पर चंपकलता जी का गांव है करैला, करहपुर, करह वन, उसमें ये वज्रनाभ की समाधि है। तो ये विग्रह वृंदावन में था, और दक्षिण भारत में विद्यानगर में एक ब्राह्मण थे, उनको यात्रा करना था, उम्र हो गई थी उनकी, तो उनके साथ में कोई नहीं था, तो उन्होंने एक ब्राह्मण बालक को अपने साथ लिया कि मेरी सहायता करने के लिए चलो, मुझे यहाँ वहाँ दर्शन करना है, मेरे साथ रहो, मेरी मदद करो। तो ब्राह्मण बालक के साथ में उस वृद्ध ब्राह्मण ने पूरा भारत भ्रम तीर्थ यात्रा किया, और उनकी यात्रा जो है वो समाप्त हुई वृंदावन में, और वृंदावन में साक्षी गोपाल के सामने उनकी यात्रा समाप्त हो गई। तो वो ब्राह्मण उद्ध ब्राह्मण उस बालक ब्राह्मण के ऊपर इतना प्रसन्न था, उसने इतनी बढ़िया सेवा की थी निस्वार्थ भाव से, कोई अपेक्षा नहीं थी कि दक्षिणा मिलेगी, कोई पैसा मिलेगा, एक बेटे की तरह, एक पोते की तरह उन्होंने सेवा किया। तो ब्राह्मण बहुत संतुष्ट हो गए, उनकी यात्रा भी सफल हो गई, बिना बाधा के सहायता से पूरी तरह संपन्न हो गई। तो वो भाव में आकर उन्होंने भर भर के आशीर्वाद दिए बालक ब्राह्मण को और कहा कि मेरी जो छोटी बेटी है उसको साथ, उसका विवाह मैं आपके साथ में करूंगा, ऐसा प्रेम से बोल दिया, और फिर दोनों जुदा हो गए। थोड़े दिन के बाद में जब समय बीता, तो छोटे ब्राह्मण को विवाह की इच्छा हुई, तो ब्राह्मण के वचन की याद आई, तो वो विद्यानगर गया और उनके परिवार में उनको मिला सबको और कहा कि आपने तो वादा किया था। तो वृद्ध ब्राह्मण बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया, और वो अपनी इच्छा, अपना वादा पूरा करने के लिए तैयार था, तो अपने बेटों के पास गया, उसके बड़े बड़े बेटे थे, उन्होंने कहा कि मैंने इसको वादा किया है, तो वो तभी नहीं था, एकांत में बोल रहे हैं। तो वो कह रहे, पिताजी आप पागल हो गए क्या, ऐसे किसी को भी आप वचन देते आते हो? हाँ, तो क्या हुआ, आपने उनको लेके गए तो उनको दक्षिणा देना है, आपको कुछ पैसा देना है, कुछ वस्त्र देना है, कुछ धन देना है, बस ये हमारी बहन को विवाह में देना है, ये तो बड़ी बात हो गई, ऐसा नहीं होता है, हम लोग नहीं मानते इस बात को। तो पिताजी बहुत संकट में आ गए, कैसे, ने वचन तो दिया है, लेकिन बहुत घर में बहस होती है कि मैंने वचन दिया है, बालक पिता पुत्र कहते हैं नहीं, मैं नहीं, हम नहीं मानेंगे इस बात को, हमारी बहन को नहीं देंगे उसको, क्या गरीब ब्राह्मण है, कुछ योग्यता नहीं है, कुछ नहीं उसके अंदर। तो फिर वो वृद्ध ब्राह्मण आता है और वो मजबूरी से बोलता है कि मुझे याद नहीं मैंने आपको क्या वचन दिया है, और बेटे खड़े हैं पीछे ऐसे अंपायर के रूप में, मतलब पापा को ऐसे ही बोलना है, और वो बोल रहे हैं ना ये कंफर्म करने के लिए उधर खड़े हैं वो, और पापा बोल देते हैं। तो वो ब्राह्मण बालक को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसने किसी अपेक्षा के साथ में तो यात्रा नहीं करवाई थी उनको, ना उनको पहले कहा गया था कि अगर यात्रा करोगे तो मेरी बेटी की शादी आपके साथ कराएंगे, ये तो उन्होंने दिल से कहा था, ना उनकी ऐसी अपेक्षा थी कि मुझे ऐसा मिलना चाहिए वरदान। तो जब भाव से सेवा की है और भाव से ही वरदान मिला है, इस प्रकार से व्यवहार होता है तो बहुत दुख होता है उसको। तो कहते हैं नहीं, आपके पिताजी ने मुझे वचन दिया था। तो फिर वो कहते हैं कि कौन था साक्षी आपके बीच में? तो ये कहता है कि हमने गोपाल जी के मंदिर में ये वचन दिया था उन्होंने मुझे। तो कोई था वहां पर? कोई नहीं था, लेकिन गोपाल जी थे ना, गोपाल जी के सामने ये वचन हुआ। अभी ऐसे कहना भी उसके लिए भी श्रद्धा लगती है। अगर हमारा ऐसा कुछ हमारे जीवन में घटना हो जाए तो हम कहेंगे तो कोई नहीं था उधर क्योंकि भगवान है और वो सुन रहे हैं, हमारी भोग को स्वीकार कर रहे हैं, हमारे श्रृंगार को स्वीकार कर रहे हैं, शयन कर रहे हैं, उठ रहे हैं, स्नान करवा के ले रहे हैं, वो है वहां पर। ये भी हमारे लिए लगता है कि तो वो तो ठीक है। तो ये सबसे बड़ी पहली बात, श्रद्धा से उस बालक ने कहा कि गोपाल जी ही साक्षी थे, तो वो जोर से हंसे सब लोग, बोले अच्छी बात है, तो गोपाल जी को ले आओ साक्षी करके। उनको तो क्या था कि भगवान तो मूर्ति होते, पत्थर होते, वो थोड़ी आते हैं, वो थोड़ी किसी के बात पर ऐसे चले आते हैं, तो मतलब नामुमकिन जैसे बात हो गई। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, अगर वो साक्षी है तो उनको ले आइए आप। उनकी बड़ी श्रद्धा थी भगवान पे, दोबारा लौट के गए वृंदावन में और साक्षी गोपाल के सामने बहुत रोए बैठकर। उनको ना वो कन्या विवाह में प्राप्त नहीं हो रही है इसका दुख नहीं था, उनको वो चीटिंग का दुख था कि जो वचन दिया है उस वचन को तोड़ दिया गया है कठोरता से, हाँ इसलिए दुख था उनको। तो इसलिए उन्होंने गोपाल जी को विनती किया, गोपाल जी आप कृपा कीजिए। तो गोपाल जी कहते हैं कि जाओ मेरा नाम बोलो उनको कि मेरे सामने ऐसा हुआ है, तुमने हमने कहा। तो वो कहते हैं कि अरे गोपाल जी, आप अगर बोल सकते हो तो चल भी सकते हो, आप हमारे संग चलिए और साक्षी दीजिए। तो गोपाल जी क्या कहेंगे, अभी अगर इतना भक्त श्रद्धा से बोल रहा है कि आप मुझसे बोल रहे हो तो आप चल भी सकते हो, तो मुझे भी उस श्रद्धा को प्रतिसाद देना पड़ेगा। तो फिर वो कहते हैं कि मैं चलूंगा आपके पीछे और आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, मेरे पैरों के घुंघरू की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी और उसी रूप में ये आश्वस्त हो जाओ कि मैं आपके संग हूं, लेकिन आप अगर पीछे मुड़के देखोगे तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। इस तरह से उनका तय हुआ और वो चल पड़े। और ये पीछे उनका ध्यान है ना कि भाई ठाकुर तो बड़े नटखट हैं, बोल तो दिया आऊंगा लेकिन नहीं आएंगे तो कान पूरे लगे हैं पीछे, घुंघरू की छुम 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 आवाज आ रही है, ठाकुर जी चल रहे हैं पीछे पीछे पीछे। और देखिए आप वृंदावन किधर है, उत्तर प्रदेश में है, विद्यानगर कहाँ है, दक्षिण भारत में, पूरा ये चलते हैं पूरा, बीच बीच में थोड़ा सा शोर होता है तो आवाज सुनाई नहीं पड़ती, रुक जाते हैं और फिर सुनाई पड़ती है, फिर चलते हैं। इस तरह से उनको सीधे विद्यानगर लेके जाते हैं साउथ इंडिया में, और फिर वो पंचायत बुलाते हैं कैसे ऐसे हुआ था, अभी हमारे गोपाल जी आ गए हैं। तो उनको वो जोर से ठहाका मार के हंसते हैं, अरे क्या पागल आदमी, पहले से तो पागल ही था अभी तो पूरा ही पागल है, और कह रहा है कि गोपाल जी को लेके आया हूं। तो सब लोग मजाक मजाक में पूछते हैं कहाँ है, कहाँ है गोपाल जी, तो उनको ले जाते वो। और फिर गोपाल जी बोलते हैं सबके सामने और साक्षात साक्षी देते हैं कि इन वृद्ध ब्राह्मण ने इनके साथ यात्रा किया था, मेरे सामने यात्रा संपन्न हुई थी और उन्होंने वादा किया था मेरे सामने, मैं उसका साक्षी हूं। तब से उनका नाम साक्षी गोपाल पड़ा और सब भाई जो है जय हो साक्षी गोपाल जी महाराज की, तो तब से इनका नाम साक्षी गोपाल पड़ा। और सारे भाई जो थे वो अवाक हो गए, तंग रह गए, सबने साक्षात दंडवत प्रणाम किया भगवान के सामने। भगवान ने साबित कर दिया कि मैं केवल विग्रह नहीं हूं, मैं साक्षात हूं, और प्रेम से जो मुझे पुकारता है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता। यही गोपाल जी जो माधवेंद्रपुर ने फिर उनको प्रकट किया, तो वो गोपाल जी अलग हैं, माधवेंद्रपुर ने गोपाल जी को प्रकट किया था, वो गोपाल जी भी ऐसे ही प्रकट होकर बोले कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे निकालो यहाँ से। फिर बोले मुझे भोजन कराओ, मैं भूखा हूँ बहुत दिन से। तो साल भर भोग लगाते रहे, फिर बोले मुझे गर्मी हो रही बहुत, चंदन लेके आओ। तो फिर चंदन इकट्ठा करने के लिए माधवेंद्रपुर चले गए उधर मलयाचल में, और इकट्ठा किया चंदन, इतना कीमती, बहुत किलो था वो, सैकड़ों किलो। तो फिर प्रकट होके बोले कि अभी मैं और गोपीनाथ जी सेम हैं, अलग नहीं है, तो गोपीनाथ जी को अर्पण करो, मैं स्वीकार करूंगा उसको। ऐसे ही भगवान, इनका हृदय स्वच्छ है, कामना रहित है, निरपेक्ष है, उनके लिए भगवान प्रत्यक्ष है। मैं एक कहानी जरूर आपको शेयर करूंगा। जब मैं ऋषिकेश में था, गुरु महाराज के आदेश से वहां पर मैं कुछ एक साल तक रहा था, कैसे भगवान साक्षात है इसका ये प्रमाण है, हाँ उसका अनुभव है ये, कि मैं रोज छोटे से गौरनिताई डीटी का रोज सेवा करता था। वहां पर तो सब लोग भक्त लोग जो है ना, वो 3:01 के बाद में कोई आएगा ना तो वो लेट मार्क होता था मंदिर में। दोपहर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सुबह की बात कर रहा हूं। 3:01 में आए तो लेट मार्क, ब्रेकफास्ट कैंसिल, और 3 to 4:30 तक 16 माला करते थे सब लोग, और 5:15 हो गए, मंगल आरती हो गई, सब लोग अपने अपनी सेवा में चले जाते थे। केवल हम जो डीटी वर्शिप ड्रेसिंग करते थे, वो भगवान के मंदिर में अकेले, मंदिर में कोई नहीं, सब लोग अपनी अपनी सेवा में। तो अकेले मैं भगवान का श्रृंगार करता था, बहुत दिन श्रृंगार किया, तो मुझे लगा कि क्या पता भगवान स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो एक दिन फिर मैंने सोचा कि कुछ उसका प्रमाण होना चाहिए ना, कुछ प्रूफ भी होना चाहिए कि भगवान मेरी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। तो मैंने फिर एक दिन श्रृंगार किया पूरा, और एंड में भगवान को कहा कि अगर आप मेरे श्रृंगार की सेवा स्वीकार करते हो तो आज ब्रेकफास्ट में, ब्रेकफास्ट लेते समय कोई ना कोई बोलना चाहिए कि भगवान का बहुत अच्छा श्रृंगार हुआ है। तो मैं ही उधर, मेरे ही सेवा थी ब्रेकफास्ट सर्विस करने की, और मैं सबको सेवा करके सबके मुंह में देख रहा हूँ। आप बोलेंगे कि नहीं? आप बोलेंगे? कोई नहीं बोल रहा है। सब लोग प्रसाद खाए और प्रसाद खा के उठ के चले भी गए। लास्ट में वो महाराज आ गए वहां के, जो महाराज वहां पर आश्रम के मठ के प्रमुख थे, उन्होंने प्रसाद पाया, वो भी कुछ नहीं बोल रहे। लास्ट में दर्शन लेकर आए थे, वो प्रसाद खा के हो गया और वो उठने लगे, और मैं भी जाने लगा उदास होकर। तो उन्होंने कहा, विश्वरूप भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं आज। तो बहुत आनंद हुआ, लेकिन कैसा होता ना अपना मन, मुझे लगा ये लक बाय चांस होगा, बाय फ्लूक उन्होंने ऐसा कहा, कह दिया होगा। तो तसल्ली होती है ना हृदय में, हमारे हमारी भौतिक प्रवृत्ति कैसी होती है, वी आर ऑलवेज डाउटिंग ना, कॉन्स्टेंट संशयात्मा प्रणश प्रसिद्ध थी। तो वो मैंने सोचा कि अगली बार, नेक्स्ट डे जब ड्रेसिंग किया भगवान का, मैंने कहा कि आज अगर दोबारा कोई बोलेगा ना, फिर मुझे पूरा यकीन हो जाएगा। तो उन्हें बड़े प्रेम से श्रृंगार किया। उस दिन मेरी प्रसाद की सेवा नहीं थी, पाने की सेवा थी, बैठ गया, प्रसाद पाया, सब लोग ने प्रसाद पाया, महाराज ने भी पाया, और सब लोग उठकर चले गए। उसके बाद में अपने अपने काम में सब लोग लग गए। मैं बड़ा उदास था कि देखो, कल मैंने कहा था ना, कल का मतलब मन में ही बोल रहा हूँ कि ये लक बाय चांस था, ये सही नहीं है। दिन में मुझे एक व्यक्ति बोला, प्रभु जी आज श्रृंगार बहुत बढ़िया हो गया। उसके बाद में कभी मैंने भगवान से पूछा नहीं। और ये निश्चित समझना कि भगवान हम जितने उनके साथ में आदान प्रदान का अनुभव करने के लिए उत्सुक है, उससे अनंत गुना उत्सुक वो है आपसे आदान प्रदान करने के लिए। ये मत समझना कि वी वॉन्ट टू टॉक टू हिम एंड ही इज रिलक्टेंट, कि उनको नहीं इच्छा है, वो केवल इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग कभी शुद्ध हृदय से, शुद्ध भावना से उनसे आदान प्रदान करेंगे, ताकि वो कुछ अपने दिल की बात आपको बताएं। और सबको उन्होंने अपने दिल की बात बताई है, सबको बताई। जैसे मदन मोहन जी को लेकर को आए सनातन जी महाराज, तो क्या बोले, देखो गोपीनाथ, मदन मोहन जी मेरे पास तो कुछ नहीं है पंच पकवाना, मक्खन बक्खन कुछ लड्डू वड्डू है नहीं मेरे पास, मैं रोज भिक्षा करता हूँ, कुछ आटा मिलता है मुझे वो जमुना जी के जल में भिगोता हूँ, उसकी गोली बनाता हूँ, बाटी बनाता हूँ और उसको मैं अग्नि में भूनता हूँ और सीधे आपको भोग लगाऊंगा, उसके बिना मेरे पास कुछ नहीं है, पहले ही बता देता हूँ मेरे पास मिठाई वगैरह कुछ है नहीं। नहीं 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 आप जैसे रखोगे मैं रहूँगा। लेकिन एक दिन बोलते ही उनको, क्या सनातन जी महाराज आप बिना नमक की बाटी खिलाते हो मुझे, कुछ तो थोड़ा नमक डाला करो। मैंने पहले कहा था ना आपको, मैं मेरे पास नमक नहीं है ना मिठाई है, नमक है ना कुछ नहीं है। और लेकिन ऐसा कहा उन्होंने प्रेम से, लेकिन खुद ही अपने नमक की व्यवस्था किया। बहुत लंबी कहानी है वो, तो कहने का तात्पर्य यह है कि साक्षी गोपाल जी महाराज बड़े दयालु हैं। और क्यों लीला करते हैं ऐसे, क्यों लीला किया उन्होंने? अरे हम सब लोगों को ये श्रद्धा दिलाने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए कि मैं हूं और आप चाहो तो आपके साथ भी ऐसी लीला कर सकता हूं, ये विश्वास दिलाने के लिए भगवान ने लीला किया। फिर वो वहां से साउथ इंडिया से यहां कैसे आए? यहां के जो पुरुषोत्तम देव महाराज है ना, जिनके पुत्र हैं राजा प्रताप रुद्र, ऐसे अद्भुत चरित्र है राजा प्रताप रुद्र का। उनके पिताजी पुरुषोत्तम देव जो थे, उन्होंने एक बार विद्यानगर में जाकर युद्ध किया था विद्यानगर के राजा के साथ, वो राजा को परास्त कर दिया था। और राजा को जब परास्त किया तो जिसको परास्त करते हैं उसकी सारी संपत्ति आपकी हो जाती है, तो उसमें वो गोपाल जी को लेकर, साक्षी गोपाल जी को लेकर जगन्नाथपुरी आए थे। और जब पहले आए थे ना तब यहाँ पर नहीं थे वो, जिस समय आए थे उनको जगन्नाथ जी के मंदिर में विराजमान किया गया था। लेकिन क्या है ना, भगवान बड़े नटखट हैं। अभी वो जगन्नाथ जी उसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है लेकिन फिर भी अलग है। जगन्नाथ जी अपने भाव में प्रकट हैं, साक्षी गोपाल जी अपने भाव में प्रकट हैं, प्रभु रामचंद्र अपने भाव में प्रकट हैं, सब अपने अपने भाव में प्रकट हैं, अपनी लीला करते रहते हैं। और जगन्नाथ जी यहाँ पर तो भोजन करने के लिए आए हैं। हाँ, राजा इंद्रद्युम्न को कहा था उन्होंने कि मैं एक बार भोजन करूँगा ना और हाथ धोऊंगा तो वो हाथ का पानी सूखने के पहले दूसरा भोग आना चाहिए। सब कंटिन्यूस खाते रहते हैं, रात को 1 बजे भी भोग निकलता है उनका, वैसे वाद्य बजते हैं तुरंत, पहले सैनिक, उसके वादनत्री वादन करने वाले, उसके बाद में भोग, फिर बाद में वादन करने वाले, फिर सैनिक, रात को 1 बजे चल रहा है दर्शन का मंडप जो है ना उधर बंद, उधर भोग जा रहा है रात को 1 बजे, सुबह 3:30 बजे भी भोग जा रहा है। बहुत कम सोते हैं और बहुत ज्यादा खाते हैं। लेकिन जैसे ही साक्षी गोपाल जी आ गए ना तो कहते हैं कि सुबह के जितने मिठाइयों का भोगता रहा सब खत्म होता था, जगन्नाथ जी को मिलता ही नहीं था वो। जगन्नाथ जी ने फिर प्रत्यक्ष रूप में राजा के साथ कंप्लेंट किया कि साक्षी गोपाल जी है ना मेरी सारी मिठाई खा जाते, इनको यहां पर मत रखो। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर लिखा है कि देर वॉज सम डिसएग्रीमेंट बिटवीन जगन्नाथ एंड साक्षी गोपाल। दिस डिसएग्रीमेंट इज कॉल्ड प्रेम कलह, उसको प्रेम कलह कहते हैं, हा? बड़े प्रेम से, क्वारल ऑफ लव। तो ये प्रेम कलह को शांत करने के लिए राजा, ओडिशा के राजा थे पुरुषोत्तम देव, उन्होंने 20 किलोमीटर दूर मंदिर बनाया, 22 किलोमीटर दूर वहां से मंदिर बनाया और यहां से कहा कि आपके लिए अलग से मिठाई बनाई जाएगी और कोई शेयरिंग नहीं करेगा आपके साथ। देखो कितना, फिर साक्षी गोपाल हृदय भर के मन भर के यहां पर अपना अपना भोग खाने में समर्थ हो गए। तो कैसे, देखो लगता है तो क्या ऐसे बच्चों की कहानी बता रहे हैं, हम तो छोटे बच्चे हैं, हमको थोड़ी नींद आनी चाहिए इसलिए हम लोग बता रहे हैं, ऐसा हमको लगता होगा कि चाइल्डहुड स्टोरीज यू नो टू बी टोल्ड इन द नाइट टाइम। यहाँ सब लोग एडल्ट बैठ के यहाँ पर सुन रहे हैं क्योंकि ये भगवान अपना लीला प्रकट कर रहे हैं और सुनने में भी कितना आनंद आ रहा है, कहने में भी कितना आनंद आ रहा है कि भगवान भगवान के अंदर भी रिश्ते होते हैं। एक भगवान भगवान बन के खड़े, एक भगवान राधा रानी बन के उनसे बातें कर रहे हैं। रथ यात्रा में संवाद आप पढ़ेंगे ना तो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव में निकालो उसको, एनीवेज, तो ये प्रेम कला की वजह से यहां पर मंदिर बना है बहुत सुंदर। सो चैतन्य महाप्रभु यहां पर आए, गोपाल सौंदर्य देखी होइला आनंदित। गोपाल जी इतने सुंदर है, आपने देखा ना, आज आपका परम भाग्य है कि श्रृंगार करने के पहले ही आपको दर्शन हुआ है। तो बहुत सारा अंग जो उनका है वो श्रृंगार से ही ढक जाता है। आज आपने देखा होगा उनके अंदर एक बड़ी लंबी माला है जो पैर से घुटने के पास से ऊपर जा रही है, वो गुंज माला है, वो गोपियों ने उनको पहनाया था जब ब्रज में थे वो। तो गोपाल जी का सौंदर्य देखकर चैतन्य महाप्रभु बड़े आनंद का अनुभव किया और प्रेम से विभोर होकर, भाव विभोर होकर उन्होंने वहां पर नृत्य किया और बहुत सारी प्रार्थनाएं गोपाल जी को अर्पण की। भक्त लोग भी साथ में थे, नित्यानंद प्रभु भी साथ में थे। तो रात को नित्यानंद प्रभु ने पूरा गोपाल जी का लीला वर्णन किया और चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रेम से, बड़े आतुरता से सुना उसको। और फिर नित्यानंद प्रभु से गोपाल जी का गौरव लीला सुनने के पश्चात गोपाल जी के चरणों में गौरांग महाप्रभु आके बैठ गए और सब भक्तों ने देखा कि गोपाल और गौरांग महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है, सेम टू सेम है एकदम। भगवान ने ऐसा लीला दिखाया उनको कि गोपाल जी का रूप और अपना रूप एक दिखाया उनको। सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि गौर गोपाल अलग नहीं है, दोनों सेम है। तो ये लीला भी यहां पर हुई है और सब लोगों ने भगवान का ये सुंदर दृश्य देखकर आनंद का अनुभव किया और नित्यानंद प्रभु ने देखा कि दोनों के चेहरे सुंदर चंद्रमा की तरह है और दोनों ने गेहुआ वस्त्र धारण किया हुआ है, संन्यास वस्त्र, ऐसा दर्शन उनको हुआ। श्रृंगार तो ऐसे ही सफेद रंग का हुआ था लेकिन सबको उस समय चैतन्य महाप्रभु की अनंत कृपा से गेहुए वस्त्र में गोपाल जी दिखे, जैसे वस्त्र उन्होंने पहने थे उनका चेहरा और गोपाल जी का चेहरा एक ही था। उसके बाद में आप जानते हैं कि साक्षी गोपाल जी तो प्राचीन है और इंद्रदुम्न महाराज फिर जब आए तो गुंडीचा देवी आप जानते हैं बहुत भगवान की बहुत ही सुंदर भक्त थी, वो दोनों पति पत्नी विशेष भक्त थे भगवान की। उनकी भी महानता यह है कि उनके साथ में जगन्नाथ जी हमेशा संवाद करते थे, बोलते थे उनके साथ में। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने उनको वरदान मांगा कि मुझे वरदान चाहिए आपसे कि मेरी कोई संतान ना हो। सब लोग संतान मांगते हैं लेकिन उन्हें संतान नहीं चाहिए ऐसे मांगा। तो भगवान ने कहा आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, कारण क्या उसका? उन्होंने कहा कि मेरे पीछे ये जो मंदिर जगन्नाथ जी का है इसका कोई क्लेमेंट ना हो, मतलब वारिस, मतलब मेरा मंदिर है, प्रॉपर्टी के लिए कोई अपना ना बना ले उसको, ये आपका मंदिर होना चाहिए। तो गुंडीचा देवी अभी इतनी पतिव्रता थी, वो भक्त थी भगवान की बड़ी, तो उन्होंने कहा भगवान आपने तो मेरे पति को वरदान दे दिया कि पुत्र न होगा, तो मुझे माता बनने का तो मौका नहीं है, तो हमारा श्राद्ध संस्कार कौन करेगा? भगवान ने कहा कि मैं आपका पुत्र बनूंगा। आज भी जगन्नाथपुरी में तिथि है एक, जिस तिथि में जगन्नाथ जी स्वयं सफेद वस्त्र पहनकर इंद्रद्युम्न और गुंडीचा देवी का श्राद्ध करते हैं। ऐसे और कहां लीला हुई बताइए? अग्रद्वीप में, नवद्वीप धाम में एक और एक द्वीप है अग्रद्वीप, वहां पर तीन घोष भाई थे, क्या नाम उनका? गोविंद घोष, गोपाल घोष और वासु घोष। वहां पर भी गोपीनाथ जी श्राद्ध करते हैं क्योंकि एक गोपाल, शायद गोपाल घोष का पुत्र मर जाता है, अकाल मृत्यु हो जाती है, तो बहुत रोता है वो और गोपीनाथ से कहता है कि आपने भी मेरा बच्चे को तो छीन लिया, मेरा श्राद्ध कौन करेगा? तो गोपाल जी स्वयं बोले गोपीनाथ जी कि मैं करूंगा। और जिस दिन वो गोविंद घोष या गोपाल घोष में से एक, जिसका गोविंद घोष, उनका जब देहांत हो गया उस दिन दर्शन जब खुला तो उनका श्रृंगार तो कुछ अलग कर किया था लेकिन जब पर्दा खुला दूसरी बार तो वो गोपीनाथ जी उधर सफेद वस्त्र में थे। तो सब लोग समझ गए कि भगवान अपना वादा पूरा कर रहे हैं। तो भगवान जी का विग्रह लेकर उनका श्राद्ध कर्म किया गया, पहले दाह संस्कार किया गया फिर श्राद्ध भी किया गया और आज भी उस स्थिति में, हर साल उस स्थिति में भगवान को सफेद वस्त्र पहनाकर उनका विग्रह ले जाकर उनका श्राद्ध करते हैं। तो गुंडीचा देवी के साथ भी भगवान संवाद करते थे। तो एक बार गुंडीचा देवी यहां पर आई और गोपाल जी का इतना मनोरम स्वरूप देखा उन्होंने, बहुत उनको आनंद हुआ। तो उनको मन में ऐसा लगा कि मैं इतना कीमती नथ पहनी हूँ। नथ मन जानते हैं आप, नथ मराठी में नथ बोलते हैं उसको, नाक का जो अलंकार होता है ना स्त्रियों का, उसको नथ कहते हैं। तो उनके नाक में ना बहुत सुंदर, बहुत ही मूल्यवान हीरे का अलंकार था। तो उनको लगा कि ये मुझे गोपाल जी को देना चाहिए। फिर बाद में विचार किया कि अरे गोपाल जी को देना चाहिए, लेकिन जब कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाते हैं तो नाक में छेद नहीं बनाते उसके अंदर। देखा कभी आपने, जितने भी मूर्तियां बने हुए हैं प्रभु जी आपके घर में, रघुनाथ प्रभु जी आपके घर में विग्रह नाक में छेद है क्या उनको? नहीं है। प्रभु जी के घर में बहुत सुंदर विग्रह है भगवान के, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो वो कहती है अरे मेरे को, मुझे तो देना तो है ये नथनी, लेकिन उनके नाक में छेद नहीं होगा तो क्या क्या लाभ है। उस रात को साक्षी गोपाल जी गुंडीचा देवी के स्वप्न में आए। उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा बालक था तो माता यशोदा ने मेरे नाक में छेद किया है, देखो देखो देखो। ऐसे स्वप्न में उनको दिखा रहे हैं वो अपने नाक का छेद, आप निश्चिंत होकर मुझे नथनी पहना दो। तो दूसरे दिन वो अपनी नथनी निकालकर लेकर आई और उन्होंने बोला पुजारी महाराज मुझे नथनी भगवान को अर्पण करनी है। तो पुजारी कहते हैं कि भगवान के नाक में तो छेद नहीं है। उन्होंने कहा आप देखिए है छेद उनके पर। अभी उन्होंने इतना श्रृंगार, इतना सेवा किया था, कभी छेद का दर्शन नहीं किया था। लेकिन जिस दिन रानी आई नथनी लेकर स्वप्न में साक्षात्कार होने के बाद में, तो पुजारी ने भी देखा कि नाक में छेद है। कि साक्षी गोपाल जी महाराज की। तो फिर वो नथनी उनको अर्पण की गई। भगवान भाव के भूखे हैं, इस बात को ध्यान रखना। जब भी उनको देखना भाव से देखना। वो हमारे नेक्टर प्रोड्यूसर ने लिखा है डीटी को देखने के बाद क्या करना चाहिए, दंडवत करना चाहिए अपने बाएं तरफ अपना भगवान को रखते हुए, और फिर प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत सारे नियम दिए हैं, बहुत अच्छा है उस नियम को पालन करना। लेकिन वो सारे नियम क्यों दिए हैं कि वो नियम का पालन करके एक दिन आपके हृदय में जो सुप्त रूप में भाव छुपा है वो जागृत हो जाए। होता ना पीताम्बरी, वो कॉपर के बर्तन को हम लोग लगाते हैं, क्यों लगाते हैं उसको? पीताम्बरी लगाने से दो तांबा जो है वो मूल तांबा चमकदार हो जाता है, उसकी जो चमक है छुपी हुई वो प्रकट हो जाती है, इसलिए पीताम्बरी लगाते हैं। तो वो सारे नियम जो पालन करते हैं हम लोग साधना भक्ति के, ताकि नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको भवनाम विदधाति कामान, अंदर जो हमारे प्रेम का भाव छुपा हुआ है सुप्त अवस्था में है वो प्रकट हो जाए, इसलिए वो साधना करते हैं। इसलिए भगवान को आप जब देखेंगे, दर्शन करेंगे, जगन्नाथ जी को भी देखेंगे, तो प्रेम से देखना, भाव से देखना। महाराज ने बताया ना कल, लव एंड अफेक्शन ये सारे नियमों के परे अपने को पहुंचा देता है। प्रेम और भाव होगा तो सारे नियम वहां पर फेल हो जाते हैं, और भगवान भी सब कुछ छोड़ भूल कर उस भक्त को अपना लेते हैं। हाँ, कर्मा भाई की खिचड़ी खाया कि नहीं? कर्मा भाई तो शूद्र थी, वो तो ऐसे कलश को चक्र को दिखाकर जाती थी। वो एक दिन भगवान गायब हो गए, उनको भोग लगाया गया, घंटी बजाकर पर्दा बंद किया गया, तो भगवान गायब हो गए और सीधे कर्मा भाई के घर गए। बोले बोलो बहुत भूख लग रही मुझे, कुछ खाने को है क्या? मैंने जो पढ़ा है उसके अनुसार उस दिन कर्मा भाई को वहां से ठुकरा दिया गया था, क्योंकि वो अलग जाति की थी, पुजारी ने उसका अपमान करके भगा दिया था। वो बहुत दुखी होकर घर चली गई थी, बहुत रो रही थी वो, इसी का उसके गांव के सीमा के बाहर घर था उसका, वहां पर ही पहुंच गए बालक बनकर और कह रहे मैया कुछ भोजन है क्या, भूख लग रही है मुझे। तो उसका स्वरूप देखकर मैया अपना आंसू भूल गई और प्रेम से गरम गरम खिचड़ी खिलाई, दोनों हाथ से ठाकुर जी खा रहे हैं उसको और खाने में मग्न हो गए। उतने में घंटी बजी वहां पर मंदिर में, अभी पर्दा खुलने वाला है दर्शन, तो भाग के आ गए वहां से, दोनों हाथ में खिचड़ी और मुंह पे भी खिचड़ी है, वो खड़े हो गए ऐसे आके, पर्दा खुल गया। तो पर्दे में क्या देखते हैं ना, पर्दा खुलने के बाद क्या देखते हैं, भोजन में कहीं भी खिचड़ी नहीं है, लेकिन उनके मुंह में दोनों हाथ में खिचड़ी लगी हुई है। तो वो राजा को खबर पहुंचती है, सब गांव ढूंढ लेते हैं, तो सब लोग सैनिक पहुंचते हैं उसके घर में, क्योंकि उसी के घर में खिचड़ी बनी हुई थी, और सब वृत्तांत बताती है वो कैसे ऐसे हुआ। उस दिन से बाद में कर्मा भाई की खिचड़ी जो है वो रोज मंदिर में भगवान को लगाई जाती है। तो जाति पाति का भेद नहीं करते भगवान, भाव की बुक है वो। धनवन भी देखते नहीं है, ऐश्वर्य भी देखते नहीं है, ना जाति देखते हैं, ना नाम देखते हैं, ना गांव देखते हैं, ना विद्या देखते हैं, केवल हृदय का भाव देखते हैं। तैसे सक्षी गोपाल जी की महाराज की अनंत लीला है, तो इसका सारांश में इतना ही कह सकते हैं कि भगवान को मूर्ति मत समझना, भगवान को व्यक्ति समझना। अभी अगर प्रतिसाद नहीं भी मिल रहा है तो कम से कम बुद्धि के स्तर पर समझना कि ये व्यक्ति है, और व्यक्ति बुद्धि के स्तर पर समझेंगे तो एक दिन आत्मा के स्तर पर वो दर्शन देंगे आपको। भगवान के दर्शन देने के भी कई तरीके हैं। ध्रुव महाराज ने जब ध्यान किया था भगवान के पर, तो उन्होंने हृदय में दर्शन दिया था उनको, फिर हृदय से प्रत्यक्ष दर्शन दिया था। तो शास्त्र में लिखा है कि पहले वो स्वप्न में दर्शन देते हैं प्रसन्न हो गए तो, फिर मन के चिंतन में दर्शन देते हैं, तो उसके बाद में प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। लेकिन अगर इनका तीनों का दर्शन नहीं भी हुआ आपका, स्वप्न में भी नहीं हुआ, मन में भी नहीं हुआ, प्रत्यक्ष में नहीं हुआ, लेकिन नाम के माध्यम से रोज दर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उनका, कली काल नाम रूपे कृष्ण अवतार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम के ध्वनि के रूप में वो आज भी आपको दर्शन दे रहे हैं। तभी हम आपको अलालनाथ की कथा बताएंगे, जो कि वहां पर कथा नहीं होने वाली है, एक और ग्रुप वहां पर कथा करके यहां पर आने वाला है। तो अलालनाथ की कथा ऐसी है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो भगवान अपने ब्रह्मा जी जो हैं वो बड़े बेमूड हो गए थे। एक सेकेंड ना, उनको अंधकारमय अज्ञान हुआ था और वो यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने तपस्या किया। उस समय भगवान ने उनको दर्शन दिया। उन्होंने कई जगह तपस्या किया वैसे, एक जगह तपस्या किया तो उसका फल उनको बरसाना में चार मुखी पर्वत बनने का भाग्य प्राप्त हुआ, और यहां पर तपस्या किया उन्होंने अलालनाथ में, वहां पर एक सुंदर पर्वत है, उस पर बैठकर दर्शन दिया उन्होंने भगवान को, तपस्या किया और भगवान ने उनको दर्शन दिया। फिर भगवान ने कहा कि आप मेरी एक मूर्ति बनवाओ, चार भुजा वाली, जिसमें शंख चक्र पद्म गदा होना चाहिए, उसके गले में सोने की चेन होनी चाहिए, उसके छाती पर कौस्तुभ मणि होना चाहिए, ऐसे सब डिटेल में वर्णन दिया भगवान ने। फिर ब्रह्मा जी ने वो मूर्ति बनाई और वो बनी अलालनाथ की मूर्ति, विष्णु भगवान की। और ब्रह्मा जी को भगवान ने वरदान दिया कि ये जो जिस पर्वत पर आपने बैठकर तपस्या किया है वो आपके नाम से प्रसिद्ध होगा, ब्रह्मगिरी के नाम से। उस तरह से वो अलालनाथ की मूर्ति जो है विष्णु भगवान की, वो प्रकट हो गई। लेकिन उसमें एक विशेष बात ऐसी है कि वो उनका एक हाथ ऐसे अभय मुद्रा में, उसमें कमल पकड़ा है उन्होंने लेकिन फिर भी अभय मुद्रा में। विष्णु की कोई भी मूर्ति अभय मुद्रा में नहीं होती है, आप देखेंगे कभी विष्णु की मूर्ति, चार हाथ अपने चार वस्तु पकड़ के खड़े रहते हैं, आशीर्वाद जो है ना अभय मुद्रा वो नहीं होती है, अभय मुद्रा केवल कृष्ण भगवान की होती है। तो ये मूर्ति अभय मुद्रा में है, और इनका जो शंख चक्र पद्म गदा जिस हाथ में पकड़ने का नियम है, वो नियम के अनुसार भी ये कृष्ण है, ये प्रमाण है उसका, जनार्दन भाव में है वो, जनार्दन भाव। उसके आगे कहानी ऐसी आती है कि इसकी सेवा एक ब्राह्मण के पास आई, श्री केतन नाम के। श्री केतन एक कर्मठ ब्राह्मण था, भिक्षा करता था। एक दिन वो दूर चला गया तो अपने पुत्र जा मधु, उस पुत्र को उसने कहा कि ये जो भोग है भगवान का अभी तुम लगाना, तीन दिन मैं नहीं हूं। सब विधि विधि समझा दिया उसको, नम्र मंत्र समझा दिया, माता को बता दिया कि इसको आप दीजिए, ये भोग लगाएगा। तो पहली बार जब भोग की थाली बनी तो ले गया वो, और बोला कि भगवान को अर्पण करने, तो पूरे मंत्र मंत्र बोले, थाली लगाई, घंटी बजाई, और भगवान को बोला उसने, आप कृपा करके प्रसाद पाइए, भोग पाइए। बच्चे थे तो खेलने चले गए मधु, हम लोग बैठ के गाते हैं ना वो भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, उसमें ये खेलने चला गया। खेल के लौट के आया थाली देने के लिए, थाली वैसे के वैसे ही है, तो रोने लगा वो, भगवान आपने पाया नहीं, आप पाइए, मेरे पापा डांटेंगे मुझे बहुत। उन्होंने कहा कि भगवान को अर्पण करना है इसको। फिर खेलने चला गया, फिर वापस आया, देखा थाली वैसे के वैसे ही है, उस बार बहुत रोया वो, बहुत रोया। भगवान मैं विनती करता हूँ आपको, अभी कौन सी प्रार्थना बोलूँ, सब प्रार्थना बोल के हो गया मेरा अभी। आप खाते नहीं, क्यों नहीं खाते आप, नाराज हो मुझ पर आप, लेकिन पापा का आदेश है, मुझे तो करना ही है, आपको भोजन करना ही है। फिर चौथी बार जब आए तो थाली खाली थी, बड़े खुश हो गए वो, थाली लेके माँ को दी, माँ ने कहा किधर है प्रसाद, बोले वो तो खा गए। बोले बच्चा बहुत शरारती हो गया है, पिताजी ने कुछ कहा और वो खुद खा के जा रहा है, भाई क्या करे, मैया है वो तो बेचारी क्या करेगी। कहते हैं उस मैया ने 3 दिन उपवास किया, क्योंकि तीनों दिन जितने भी भोग लगाए गए सारे जबरदस्ती गोपाल जी को, गोपीनाथ क्या नाम, अलारनाथ जी को खिलाया उन्होंने। 3 दिन के बाद में पिताजी लौट कर आए और बोला पत्नी को महाप्रसाद खिलाओ। तो पत्नी ने पूरा वृत्तांत सुनाया उसको कि ऐसे ऐसे हो रहा है, हर दिन थाली खाली लेके आता है। जाके बालक को डांटा उन्होंने, क्या राज है बताओ, कब से तुमने ये सब थाली का प्रसाद खाना शुरू कर दिया, वो भी भगवान की थाली से सीधा बिना ट्रांसफर किए हुए। पर नहीं बात पिताजी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने भगवान को रो रो के बोला, पहले तो नहीं खाया था उन्होंने, लेकिन बाद में रो रो के बोला तो हर भोग खाना शुरू किया उन्होंने, और सारे भोग उन्होंने खाए, तो फिर भी पिताजी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा चलो थाली बनाऊँ, नया भोग बनाया और ले गए उनको अर्पण करने के लिए। ये छुप गया पीछे खंबे के पीछे, और बड़े प्रेम से मधु जो है वो भगवान को भोग लगा रहे हैं, प्रेम से आह्वान कर रहे हैं भगवान पालो इसको। तो श्री केतन उसके पिताजी के नजरों के सामने अलालनाथ जी ऐसे नीचे उतरे, खीर का पात्र लिया और खाने जा रहे थे, तो खंबे के पीछे से श्री केतन झपक पड़ा उनके ऊपर, और अभी अभी गरम बरम खी थी ना वो, झपक पड़ने से हाथ पकड़ने से क्या हुआ, वो खीर जैसे पूरे हाथ और शरीर पर गिर गई, और भगवान के शरीर पर जलने के निशान बन गए उसमें। वो कह रहा है भगवान को, अरे कोई भगवान का विग्रह भोजन करता है क्या, कैसे कभी सुना है क्या हमने आज तक, कैसे भगवान हो आप, अगर आप सब खाएंगे तो हम लोग कैसे खाएंगे, तो सब भूखे मर जाएंगे, ऐसे भगवान के साथ बोल रहे हो। देखो अल्टीमेटली सबके सामने क्या होता है, भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपा तो हो रही उसके ऊपर, साक्षात भगवान विग्रह से बाहर आकर उसके घर का भोजन पा रहे हैं और दर्शन भी दे रहे हैं, बालक की कृपा से, मतलब बालक उनका इतना महान है। लेकिन फिर भी उसने भगवान के साथ में झगड़ा किया, तो भगवान ने कहा कि तुम मूर्ख ब्राह्मण हो, अश्रद्ध ब्राह्मण हो, तुम जैसे ब्राह्मणों के लिए मैं प्रकट नहीं होता, मैं तो तुम्हारे पुत्र के लिए प्रकट हो रहा था, क्योंकि उसने मुझे भोग लगाया था, जाओ तुम्हारे सारे वंश का नाश होगा। कुछ ही दिनों में उसके परिवार के जितने लोग थे वो स्वयं और सारे लोग मर गए, केवल मधु बच गया, बाकी सारे ब्राह्मण जितने भी रिश्तेदार थे वो सब मर गए, हाहाकार हो गया उस गांव में। ऐसा है भगवान, देखो यहां पर भी वही लीला है, वहां पर भी वही लीला है, भक्त और भगवान के अंदर का प्रेम की लीला है। भगवान का हर समय अवतार लेकर लीला करने की आवश्यकता नहीं है, वो गोपाल जी के रूप में वो कुंभन दास जी थे, चतुर्भुज दास जी थे, उनके साथ में मूर्ति के बाहर आकर प्रत्यक्ष लीला करते थे, वो जब मर्जी होगी तब विग्रह बनकर भोग स्वीकार करते थे, जब मर्जी होगी तो विग्रह से बाहर निकालकर बालकों के साथ में खेलते थे, वो इतना अद्भुत लीला किया उन्होंने। कहते भगवान की साक्ष्य लीला का भूख पूरी पूरी नहीं हुई, तो भगवान ने दोबारा श्रीनाथ जी गोपाल जी के रूप में प्रकट हो गए और अपना साक्ष्य लीला का जो भूख थी भगवान ने पूरी की। तो ये जो भगवान है उनका आगे जाकर जो साउथ इंडिया के अलवर है ना, अलवर बहुत महान भक्त हैं, उनके हाथ में इनकी सेवा आई और फिर धीरे धीरे उन्होंने बहुत अच्छा सेवा किया उनका, लेकिन उनका नंबर बहुत बढ़ गया तो उनका उदर निर्वाह नहीं हुआ, तो वो सब लोग भिक्षा में लग गए, तो उनकी सेवा जो है वो समाप्त हो गई और अलालनाथ जी का सेवा बंद हो गया। फिर जब पुरुषोत्तम जी महाराज, पुरुषोत्तम देव, जब भी वो युद्ध से लौट के आ रहे थे ना, तो जब वो आ रहे थे वापस तो अलालनाथ के मार्ग से आ रहे थे, तो उनको जोर जोर से आवाज सुनाई पड़ी, जैसे कोई पुकार रहा है कि मैं यहां पर हूं, मेरी सेवा करो, मुझे भूख लग रही है। तो वो रुके और देखा तो उनको विष्णु भगवान की मूर्ति का दर्शन हुआ, तो उन्होंने पुनर उनकी सेवा की जो स्थिति है ना, सेवा की जो पद्धति है वो स्थापना की, जो आज तक चल रही है। इसीलिए अलालनाथ की जो सेवा है वो जगन्नाथ जी की जो पूजा पद्धति है और जो नियंत्रण है, वही नियंत्रण में इनका भी सेवा होता है। द सेम ग्रुप ऑफ पीपल, जिस प्रकार से वहां सेवा हो रही है उनके आधिपत्य में ही इनकी सेवा हो रही है, क्योंकि उड़ीसा के राजा पुरुषोत्तम देव ने अपने लोगों को लेकर इनका सेवा प्रस्तापित किया था। इसलिए आज भी हमें अलालनाथ में प्रसाद पाना है तो बड़ा आसान चीज़ है, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट जगन्नाथपुरी का है उसी कॉन्टैक्ट से हम वहाँ पर भी प्रसाद बना सकते हैं। हमारी हर यात्रा में हम लोग वहाँ पर राजभोग प्रसाद पाते हैं। तो ऐसे अलालनाथ जी यहाँ से शायद 24 किलोमीटर है जगन्नाथपुरी से। अभी आप जानते हैं बड़ी अच्छी कहानी है जगन्नाथ भगवान की, कि वो हर साल पब्लिक में स्नान करते हैं उनके जन्मदिन के उपलक्ष में। ज्येष्ठ पूर्णिमा उनका जन्मदिन है और गुंडीचा मंदिर उनका जन्मस्थान है सुंदराचल। तो वो भरी जनता में उन्होंने इंद्रद्युम्न को कान में कहा था कि मुझे अभिषेक करवाओ, तो उसी याद में हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान के विग्रह को बाहर निकालकर एक पब्लिक जगह पर उनको सुबह से लेकर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक स्नान कराते हैं। और भगवान भी मैं हूँ प्रत्यक्ष ये दिखाने के लिए उनको बुखार आ जाता है, ज्वर होता है ज्वर। हमारे डॉक्टर अलवा नाम के भक्त हैं, बड़े भावुक भक्त हैं भगवान के। उनका ऐसा एक लीला है कि जहाँ भी जाते हैं वो पुजारी से बड़ा अच्छा तुरंत दोस्ती कर लेते हैं। तो उन्होंने तुरंत जगन्नाथ जी में आए तो जगन्नाथ जी के पंडाओं से मित्रता की। तब जगन्नाथ जी वो अनवसर काल में थे, उनको बुखार आया हुआ था और दर्शन बंद था। तो वो अंदर उनको बुलाया, उन्होंने आ जाओ डॉक्टर साहब हमारे मरीज बीमार हैं उनको जरा चेकअप करो। तो उनको लगा हाँ 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 अच्छा ठीक है, गुड। अंदर चले गए और जैसे देखते ना मरीज को बुखार ऐसे देखते ना हम लोग, लगाया ना तो बहुत चटका लगा उनको जोर से, वेरी सिवियर हीट लगा उनको और वो ऐसे भाव विभोर हो गए जैसे उन्होंने ये चमत्कार देखा। जो ऐसे ही आराम से गए थे वो, लेकिन जब साक्षात उनको अनुभव हुआ कि भगवान का शरीर तो तप रहा है, तो रात को 1:30 बजे वो भागे वहां से। किधर पता है? बिरला गेस्ट हाउस में भागे। क्यों? क्योंकि हमारे महाराज जी वहां पर विश्राम कर रहे थे। धड़ 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 धड़, महाराज उठो महाराज उठो, क्या हुआ? जगन्नाथ जी को बुखार आया है, उसका अनुभव हुआ मुझे। रात को 1:30 बजे महाराज जी को जगा के भाव विभोर होकर उन्होंने बताया कि जगन्नाथ को बुखार आया है। फिर 9वें दिन जब वापस गए वो, तो पुजारियों ने उनको बताया कि बुखार चला गया, देख लो अभी वापस एक बार स्पर्श कराया तो नो बुखार। तो ये सब प्रत्यक्ष लीला है। बाय द वे उस बुखार के समय उनको एक साल पहले बनाए हुए चंदन के कुछ 100 लीटर तेल से, एक साल पहले बनाए हुए और जमीन में रखते उसको, एक ही परिवार उसको बनाता है, अगले साल के लिए इस साल बनाते हैं, एक साल जमीन के अंदर रखते हैं और फिर वो 100 लीटर चंदन के तेल में जितने सुंदर सुंदर खुशबूदार द्रव्य डाले हैं उसके अंदर, उस द्रव्य से तेल से भगवान का अभिषेक करते, साक्षात नहलाते उस तेल से, तब उनका बुखार उतर जाता है। और जो पुजारी उनको नहलाते हैं कहते हैं 7 दिन तक वो स्नान करते रहते हैं लेकिन उनके शरीर से वो उसी तेल की खुशबू आती रहती। वो तेल हमको प्राप्त होता है हर साल एक डिब्बी में छोटी सी, इतना सुगंध होता है उसके अंदर। तो एनीवे, तो ये साक्षात जब भगवान को बुखार आता है तो दर्शन उनका बंद हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु जब यहां पर आए तो जब पहली बार ये उनको पता चला कि स्नान यात्रा के बाद दर्शन बंद हो गया, तो कहते हैं कि गुंडीचा गंभीरा के घर से छोटे से कमरे से दरवाजे तोड़कर वो बाहर आए और देखा तो मंदिर बंद, तो वहीं पर बेहोश होकर गिर गए। उनके शरीर के जोड़ों में 6-6 इंच की जगह पैदा हो गई, पता समझ में आप, ये जोड़ जाए इसमें 6 इंच, ये जोड़ जाए 6 इंच, इसमें 6 इंच, उसे कई फीट लंबे होकर गिर गए बेहोश होकर। भक्त लोग आए ढूंढे ढूंढे, फिर उनको स्पर्श किया, कीर्तन किया, जगाया, फिर घर ले गए उनको, फिर लॉक कर दिया उनको, फिर वो ताला तोड़कर कहते हैं कि ताले में जो छेद था ना उस छेद में से निकल गए, वो भाव में अपने आप को एक दोरी बनाया उन्होंने, दोरी के रूप में निकल गए वहां से और फिर ना दरवाजे पे चढ़े, वो सिंह द्वार पे चढ़े, वो यहां वहां से देखा तो कहीं दर्शन नहीं हो रहा है, फिर वहां से गिर गए और बेहोश हो गए। ऐसे 3-4 दिन किया उन्होंने। उसके बाद भक्तों को समझने अभी क्या करने है, 15 दिन का लंबा समय है, कैसे अवस्था हो रही है। कहते हैं कि उस समय एक दिन क्या हुआ, जब वो वहां से छलांग लगाकर नीचे कूदे ना, मंदिर तो बंद है दर्शन नहीं हो रहा है, तो वो ऐसे ना कद्दू की तरह बन गए, गोल, ही बिकेम लाइक जगन्नाथ ओनली, और गोल बनकर वो ऐसे रोल होने लगे और सब उनकी ये भयंकर दयनीय करुणामय अवस्था भक्त लोग देख रहे हैं, क्योंकि वो सिद्धि का दर्शन नहीं दे रहा लोगों को, उनके जो दर्द हो रहा था उनको विरह का, उस दर्द के वजह से उनकी अवस्था हो गई थी, उसको देखकर भक्तों को बहुत कष्ट हुआ। तो एक बहुत प्रयास से उनको वापस उन्होंने अपने मूल स्थिति में लाया। तब किसी ने बताया उनको कि आप अलालनाथ जाइए, वहां पर भगवान दर्शन दे रहे हैं। तो कहते हैं कि भाव विभोर होकर आतुरता से भागे वो 24 किलोमीटर भगवान को ढूंढते 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 भाग कर वो अलालनाथ पहुंच गए। और अलालनाथ में जब पहुंचे तो उन्होंने चतुर्भुज विष्णु का दर्शन किया, लेकिन वो उनको मुरलीधर के रूप में दर्शन दिए, दोनों हाथ में मुरली पकड़कर बजाते हुए दर्शन दिया उन्होंने उनको। तो लोगों को चार भुजा वाले दर्शन दे रहे वो, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को मुरलीधर के रूप में दर्शन दिया। फिर भी थोड़ा सा उनका विरह थोड़ा कम हो गया, उसके बाद विरह बनता रहा उनका वैसे ही। तो ब्रह्मगिरी जो है ना, जहां पर ब्रह्मा ने तपस्या किया था, आज वो केवल एक पत्थर ही शिला वहां पर मुमकिन अवेलेबल है, पत्थर ब्रह्मगिरी वहां पर दर्शन नहीं है, उसकी एक ही शिला है, उस पर जाकर बैठ गई है, लेट गए, और उनकी विरह अग्नि से जहां जहां कोनी एड़ी जहां पर उनका शरीर का स्पर्श हुआ पत्थर को, वो सब जगह पिघल गया उनके विरह अग्नि की वजह से। आज तक साइंस में ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे पत्थर पिघला जाए। हम लोग सोना पिघला सकते हैं, लोहा पिघला सकते हैं, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड में लिक्विड मोल्टन गोल्ड और आयन बना सकते हैं, लेकिन आज तक साइंस में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे पत्थर को लिक्विड बनाया जाए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जहां पर विरह भाव में विरहाग्नि में व्याकुल होकर लेट गए, वहां पर वो पत्थर में ऐसे छेद हो गए, पत्थर पिघल गया। आज भी वो शिला वहां पर प्रेम शिला कहते हैं उसको, आप जाएंगे दर्शन जरूर करना, मंदिर के पीछे है वो शिला। ऐसे भावपूर्णक चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर अपने दिन बिताए। फिर पुजारी ने उनको दर्शन दिलाया कि देखो यहां यहां पर वो खीर गिरी थी, वो जो जला हुआ डाक सब गिरा हुआ है, सब दिखाया उन्होंने। अलालनाथ में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो है ना, उन्होंने तपस्या किया था 1 बिलियन होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। अपना मूल प्रचार कार्य आरंभ करने के पहले उन्होंने कितने, व्हाट इज 1 बिलियन प्रभु जी, 100 crores, 1000 crores, हाँ 10 years, हाँ 10 साल तक उन्होंने व्रत किया वहां पर, और 1 बिलियन यानी 100 करोड़ भगवान के नाम लिए। 3 लाख नाम 192 राउंड है, आप एक घर जाके गिनती करते रहिए कि उन्होंने कितनी माला की होगी 10 साल में। और कहते हैं 10 साल के बाद में उनको भगवान का साक्षात दर्शन हुआ, और वो एक कुंड है वहां पर बेहोश मिले थे लोगों को, ही वॉज फाउंड अनकॉन्शियस इन एक्सटेसी, क्योंकि वहां पर उनको भगवान का दर्शन हुआ था। फिर बाद में उन्होंने बताया कि ये एक साधारण कुंड नहीं है, ये साक्षात राधा कुंड है, और ये एक जो पर्वत है ये साधारण पर्वत नहीं, ये साक्षात गोवर्धन है। और उन्होंने उसके बाद में एक रहस्यमय बात हम सबके लिए प्रकट की, फिर वही बात कि सारी रहस्य की बातें केवल भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से ही प्रकट होते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये स्थान जो है ये ब्रज का पैठा गांव है, प्रविष्ट वन है, क्योंकि यहां पर भगवान चतुर्भुज रूप में थे, लेकिन जब राधा रानी के भाव में गौरांग महाप्रभु यहां पर आए तो भगवान उनको चतुर्भुज दर्शन दे नहीं पाए, भगवान को मजबूरन उनको 2 भुजा का दर्शन देना पड़ा, और यही लीला पैठा गांव में हुई थी। संक्षेप में वो लीला ऐसी है कि भगवान जब रास रचाते हैं तो शुरुआत उन्होंने शरद ऋतु में किया था, शरद पूर्णिमा जो अभी अभी हमने उसको मनाया, क्या तारीख थी वो शरद पूर्णिमा, 24 अक्टूबर। तो भगवान ने वसंत ऋतु में भी चैत्र पूर्णिमा के दिन रास बनाया था, रास लीला रचाया था, और वो रास उन्होंने किसको कहते हैं वासंती रास, वो उन्होंने गोवर्धन में आरंभ किया था। आज भी गोवर्धन में एक दीर्घ परिक्रमा का व्यवस्था है 40 किलोमीटर्स, और सनातन गोस्वामी वो दीर्घ परिक्रमा रोज दिया करते थे। जो हम लोग देते हैं वो 22 किलोमीटर की परिक्रमा है, जिसमें गोविंद कुंड पुत्र का लोटा वगैरह आता है, इसमें वो चंद्र सरोवर पेठा गांव और बहुत दूर दूर से चतुर्भुज नारायण का मंदिर वो सब आता है। तो उस दूर जगह पर गोवर्धन के पास में भगवान ने रास आरंभ किया, और कहते हैं कि जब भगवान ने रास किया तो सारे गोपियों के अश्रु और स्वेद बिंदु भाव से प्रकट हो गए और ऐसे नदियों की तरह उनके शरीर से स्वेद जल और अश्रु जल एकत्र हुआ और उसका एक भव्य सुंदर सरोवर बना, अष्टकोनी बहुत ही सुंदर सरोवर। वो सरोवर बनते समय इतना सुंदर था तो सारे देवता लोग आकाश में दर्शन कर रहे हैं, चंद्रमा जो है ज्यादा ही कुछ भाव विभोर हो गए उसको देखकर। तो ये सुंदर सरोवर अबाधित रहे, शाश्वत रहे, इसलिए उनके पास थोड़ा अमृत का स्टॉक था, कुछ बिंदु उसमें डाल दिए उसने, और राश चलता रहा और जल, स्वेद जल, अश्रु जल उसमें प्रवाहित होता रहा। आकाश में देवता लोग संगीत वाद्य गायन कर रहे हैं लेकिन यहाँ का ताल और सुर वहां से मैच नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। इंद्र भगवान नीचे आए, उन्होंने एक पत्थर की शिला ली और उसको बजाना शुरू किया, इसको म्यूजिकल असिस्टेंस देने के लिए, उसको कहते हैं बाजनी शिला, वो अभी भी वहां पर है। लेकिन फिर भी इनका कंगन का, पायल का और मुरली का जो स्वर था और जो ताल था उसके साथ में कोई भी देवता, गंधर्व, यक्ष, किम पुरुष उसको मेल नहीं खाए। उसके बाद चंद्रमा इतनी भाविवर हो गए कि चंद्रमा स्वयं उसमें पिघल गए, इसलिए उसका नाम पड़ा चंद्र सरोवर। बलराम जी वहां से दर्शन कर रहे हैं, उनको पता है कि मैं बड़ा भाई हूं, अगर मुझे दर्शन करते हुए कान्हा ने देख लिया तो वो रासलीला बंद कर देगा, इसलिए वो झुक गए, दंडवत के भाव में झुक गए, दंडवत नहीं कर रहे थे लेकिन ऐसे झुककर दर्शन कर रहे छुप छुप के। और कहते हैं कि उन्होंने जो अनुभव किया आनंद का, उसे उन्हें स्तंभ विकार हुआ, यानी अष्ट विकार में एक विकार है स्तंभ, यानी कि स्तब्ध हो जाना, स्तब्ध हो गए वो, ही बिकेम स्टंड। तो वो जो उसी अवस्था में स्तब्ध हो गए तो वो वहां पर मूर्ति बनी है उनकी, ढोका दाऊ जी, यानी बलराम जी जो ढोक दे रहे हैं, दंडवत दे रहे हैं, उस अवस्था में वो वहां पर ही स्तब्ध हो गए। जब स्तब्ध होने गए तो उन्होंने मुकुट निकाला अपना, तो मुकुट जिस शिला पर रखा वो शिला भी पिघल गई भाव से, तो मुकुट शिला भी वहां पर विराजमान है। और ढोका दाऊ जी का मंदिर गोवर्धन पे है, गुलाबी रंग का मंदिर विराजमान है। फिर जब भगवान ने लीला किया, आप जानते हैं वसंती हो या शारदी हो, सभी रास में भगवान ने हर एक गोपी के साथ में अपेक रूप प्रकट किया और भाव से वो नृत्य कर रहे थे। गोपियां सब भाव विभोर होकर नृत्य कर रही थी। अचानक उनको लगने लगा कि मैं इतनी स्पेशल हूं कि सब गोपियों को छोड़कर केवल मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। अभी आप कहेंगे उनको दिखता नहीं था क्या इतने सारे कृष्ण नाच कर रहे हैं, कुड नॉट डेड सी एनीथिंग, दे वर ऑल डांसिंग टुगेदर ओनली। लेकिन गोपियों की एक विशेषता है, जब वो कोई भी सेवा करते हैं ना तो उनको अपनी सेवा के अलावा और कुछ दिखता नहीं है, इतनी मग्नता है उनके अंदर, कार्य मग्नता इतनी गहरी है कि जब नृत्य कर रहे हैं तो कृष्ण को नजरों में ऐसे समाये रखे हुए हैं कि बाजू में कौन नृत्य कर रहा है और उनके साथ कौन नृत्य कर रहा है इसका उनको भान नहीं है। तो उनको लगने लगा कि मेरे ही साथ नृत्य कर रहे हैं सभी, इतनी सुंदर सुंदर गोपियों को छोड़कर केवल सबको त्याग करके मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, और ऐसे हर गोपी को लगने लगा। और आप जानते हैं जब भगवान को भक्त में, भक्तों के अंदर जब अहंकार पैदा होता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है, तुरंत वो अंतर्धान हो गए, जितने अनंत रूप धारण किए थे सब अनंत रूप में वो अंतर्धान हो गए। और सब गोपियां चर्चा करने लगी, अरे मेरे साथ थे, अकेले मेरे साथ थे, सब गोपियों ने यही कहा। तो सब गोपियों को पता चला कि मेरे साथ नहीं थे, वो सभी गोपियों के साथ में अनंत रूप में निजी रूप में लीला कर रहे थे, तो पछताने लगे और भगवान भी थोड़े भाव में आ गए। उन्होंने क्या किया, चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो गए वो। जैसे वो प्रकट हो गए ना, श्वेत क्या कहते हैं उसको, क्षीर सागर प्रकट हो गया ब्रज में, कमल पैदा हो गया उनके पैर के नीचे जहां पर वो खड़े हैं, शंख चक्र पद्म गदा धारण करके वहां पर खड़े हैं, रास्ते में खड़े हैं, और उसी रास्ते से जब गोपियां आ रही हैं पुकारते हुए, पुकारती गली गली, सब पुकारते हुए आ रहे हैं, कहीं हमारे कान्हा को देखा है, वृक्षों को पूछ रहे हैं, ग्राम में देवताओं को, वन्य देवताओं को, पंछियों को, सबको पूछ रहे हैं कहीं हमारे कृष्ण को आपने देखा है। और अचानक बीच में ओम नमो नारायणाय, चार भुजाओं को खड़े करके कृष्ण भगवान खड़े विष्णु बनकर, तो उन्होंने प्रणाम किया, उनको कहा कृष्ण के संग का आशीर्वाद दो और बताओ कृष्ण कहाँ हैं। तो वो विष्णु भगवान के रूप में खड़े जो कृष्ण है ना, वो भी ऐसे व्याकुल हो गए, लेकिन क्या करें, अभी उनको विष्णु का ढोंग तो रख बनाना ना, तो एक हाथ से बताया कि इस तरफ गए। सारी गोपियां ना, कोई ज्यादा प्रार्थना वगैरह नहीं किया उन्होंने, भाग गए उस दिशा में। देखो कैसा भाव है गोपियों का, ऐसी एकाग्रता होनी चाहिए, वन पॉइंटेड फिक्स्चर एंड कॉन्सेंट्रेशन। विष्णु भगवान को भी देखा ऐसे ही, क्या कहते ना, चालू चालू प्रणाम किया और चले गए। लास्ट में जो है वो गोपी, सर्वश्रेष्ठ गोपी राधा रानी जो है भवरे से बात करते हुए आ रही है, और भवरे को कृष्ण समझकर उसको अपशब्द उच्चारण कर रही है, उसको गाली दे रही है, उसको दंड दे रही है, उसको ताड़न कर रही है, उसका बीच में हंस रही है, रो रही है, और बीच में उसको विष्णु का दर्शन होता है। तो विष्णु को ही प्रणाम करके पूछती है कि आपने हमारे कृष्ण को देखा है क्या। तो जिस भाव से राधा रानी पूछती है व्याकुल होकर, इतने तीव्र विरह में थी कि उसके विरह के सामने चतुर्भुज बने हुए विष्णु भगवान यानी कृष्ण जो है वो अपने चार भुजाओं को बनाए रखना उनके लिए नामुमकिन हो गया। ही कुड नॉट मेंटेन हिज फोर आर्म फॉर्म, उनकी इच्छा के खिलाफ उनका विष्णु रूप नष्ट हो गया, दो भुजाएं पिघल गई उनकी, सारे जो शंख चक्र पद्म गदा वो भी गायब हो गए और दो भुजा में प्रकट हो गए वो मुरली धारण करते हुए। जिस भूमि जिस रूप में राधा रानी उनको ढूंढ रही थी, उस रूप को छुपाने का प्रयास कर रहे थे वो, लेकिन राधा रानी के भाव के सामने वो छुप नहीं पाया। राधा रानी ने उसका उनके अंदर का जो मुरलीधर भाव है वो प्रकट करके विष्णु रूप को नष्ट कर दिया। ऐसे भगवान ने ब्रज में कई बार अपने ऐश्वर्य को प्रकट करने का प्रयास किया है, लेकिन माधुर्य का प्रभाव ब्रज में इतना है कि हर समय भगवान फेल हो गए हैं। इतना माधुर्य ब्रज में है कि उस ब्रज में कोई जानता ही नहीं है कि ये विष्णु है स्वयं, ये परम भगवान है, ये गोलोकेश्वर है, वैकुंठनाथ है, कोई जानता नहीं उनको, ना जानना चाहते वो, उनके लिए केवल कृष्ण है और वो कृष्ण भगवान है ये भी नहीं जानते वो। और उनके प्रेम के सामने वो कृष्ण विष्णु होने पर भी अपने विष्णु रूप का वैकुंठ का ऐश्वर्य प्रकट नहीं कर सकते, बार बार हार जाते हैं। माधुर्य इतना गाढ़ा है कि ऐश्वर्य हमेशा नष्ट हो जाता है वहां पर। तो जिस तरह से राधा रानी के प्रेम के वजह से चतुर्भुज विष्णु को कृष्ण जो बने हुए हैं वो अपना चतुर्भुज रूप बनाए नहीं रख पाए, उसी तरह से यहां पर राधा रानी के भाव में गौरांग महाप्रभु भाग कर आ रहे हैं कृष्ण को देखने के लिए, तो विष्णु भी अपना विष्णु का रूप वहां पर बनाए रखने में असमर्थ हो गए। उन्होंने गौरांग महाप्रभु को मुरलीधर का दर्शन दिया, इसीलिए भक्ति सदान जी महाराज ने वहां पर गोपी गोपीनाथ का मंदिर बनाया, ये समझकर कि ये गोपीनाथ रास लीला कर रहे हैं, यहां पर दर्शन दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने गोपी गोपीनाथ का मंदिर बनाया। और वहां पर खुदाई करते हुए, मंदिर की खुदाई करते हुए एक सुंदर विग्रह प्राप्त हुआ, ओरिजिनल छोटा सा विग्रह है अलालनाथ जी का। तो रात में स्वप्न दिया जिन लोगों ने खोजा उसको कि मुझे मेरी सेवा भक्ति सिद्धांत जी के हाथों से करनी है, इसलिए विग्रह उनका अर्पण करो। तो सुबह भागभाग के वो लोग लेके आए भक्ति सिद्धांत जी के पास, और विग्रह का भक्ति सिद्धांत जी महाराज ने सेवा किया है, और गोपी गोपीनाथ के मंदिर में वो विग्रह भी आज भी विराजमान है, जो छोटा सा विग्रह है जो प्रकट हुआ था वहां पर। तो इस तरह से पैठा गांव यानी प्रविष्टवन का मतलब क्या होता है, उसको प्रविष्टन इस नाम इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि वहां पर से भगवान ने जमीन में गुफा में प्रवेश करके गोवर्धन को उठाया था। प्रविष्ट यानी प्रवेश, वन यानी फॉरेस्ट, और वहां पर एक गुफा है प्रविष्ट गुफा जो आज बंद हो गई है, पहले हमने दर्शन किया उसका। तो वो गुफा में प्रवेश करके जमीन के अंदर जाके भगवान ने जमीन के अंदर से गिरिराज को उठाया था, इसलिए उसका नाम पड़ा है प्रविष्ट गुफा। और अगर हमारे पास 5 मिनट है तो आपको मैं सुंदर वहां की लीला बताता हूँ। वो लीला ये है कि वहां पर आज भी वो भगवान तो आदमी अंतर्धान हो गए, अपना रूप बनाए रखना उनके लिए नामुमकिन हो गया, लेकिन वो कमल दल और वो क्षीर सागर कुंड जो है वो आज भी विराजमान है, और वहीं पर भगवान का चतुर्भुज नारायण का विग्रह है जो कृष्ण स्वयं विष्णु नहीं है, स्वयं कृष्ण है वो, उसके बाजू में ही वो गुफा है प्रविष्ट गुफा। तो मैंने कहा था ना कि भगवान का साक्षरस का जो इच्छा थी वो पूर्ण पूरी नहीं हुई कृष्ण अवतार में, तो वो गोपाल जी के रूप में यहाँ पे उन्होंने प्रकट की। तो उनके 8 भक्त वहाँ पर जन्म लिए, एक विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्य थे उसमें से, और 4 शिष्य गोकुलनाथ जी के थे, और दोनों महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र थे जो गोपाल जी का प्रत्यक्ष सेवा करते थे। तो उसमें एक थे कुंभन दास जी, बड़े सखा भाव में थे, बड़े सुंदर भक्त थे भगवान के, और उनके लिए भगवान हमेशा विग्रह से बाहर निकलकर उनके साथ में लीला करते थे। तो एक दिन, अभी बड़े बूढ़े थे, बहुत उम्र के थे, उनको इतनी उम्र में भी पुत्र नहीं हुआ था। तो एक दिन बीच रात में सिन्हा जी प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर आए और जगाया उनको, बोले कुंभना चलो। वो एक गोपी है जतिपुरा में, वो रोज, अभी ये कृष्ण का समय नहीं है बाय द वे, कृष्ण अभी अंतर्धान हो चुके हैं, सिन्हा जी प्रकट होकर उनकी लीला चल रही है। तो उधर कृष्ण क्या बता रहे हैं गोपाल जी उनको, कि उधर पेठा गांव में, सॉरी यतिपुरा में एक गोपी है जो रोज मैं माखन खाने के लिए आऊं इस भाव से मक्खन बनाती है, चलो आज उसकी इच्छा पूरी कर लेते हैं। तो कुंभना कहते हैं, अरे आप तो बहुत जवान हो, आप तो भाग लेते हो, लेकिन बाद में मैं पीटता हूँ, मुझे पीटा जाता है। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छत के मार्ग से ले जाऊंगा, लेकिन आज आपको चलना ही है, मुझे उस गोपी की इच्छा पूरी करनी है। तो बीच रात में ये बूढ़े कुम्मन दास जी को गोपाल जी महाराज छत के मार्ग से, पेड़ से चढ़ा के, पेड़ से छत में कूदे, छत में छेद में से अंदर कूदे और इनको भी अंदर लेके गए। अब बोले बैठो यहां पर, अभी मैं माखन चोरी करता हूं। तो ये ना, एक हाथ में वो माखन का मटके जो है ना वो ऊपर लटका हुआ है, एक हाथ से वो दोरी को पकड़ा है और लटके हुए हैं उसके ऊपर, और दूसरे हाथ से वो मक्खन खा रहे हैं। अब कुंभना देख रहे हैं उसको, मग्न होकर मक्खन खा रहे हैं लटक के। और कुछ समय के बाद में भगवान गोपाल की धोती जो है ना वो पीछे लगाते हैं हम लोग, वो छूटने लगती है। अभी लटके रहेंगे तो होगा ना ऐसे। अभी कल हम लोग नाच रहे थे, हम लोग उधर महाराज जी के साथ में, क्या नाम, व्हाट इज महाराज वो डांसिंग अवर महाराज, हाँ चंद्रमौली महाराज, तो हम लोग इतना अच्छा नृत्य करे दोनों, इतना प्रेम से नृत्य करे, दोनों की धोती छूट गई, परसों की बात है। तो एनीवेज, तो उनकी धोती छूट रही है, कुम्मन दास ही देख रहे हैं धोती छूट रही है, लेकिन मक्खन इतना प्यारा है कि उसमें व्यवधान नहीं आना चाहिए, मक्खन पर भगवान का इतना प्रेम है कि वो मक्खन खाने की प्रक्रिया में उनको बाधा अच्छी लगती नहीं है, और धोती तो छूटते ही जा रही है, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, ऐसा कुम्मन दास विचार कर रहे हैं। उतने में उनके आंखों के सामने भगवान के पीठ में से दो हाथ पैदा होते हैं, और पीछे जाकर अपनी धोती को ठीक कर लेते हैं, फिर कंधे में अदृश्य हो जाते हैं, और दो हाथ जो मक्खन खा रहे हैं वो कार्य अबाधित जारी है। और ये चतुर्भुज का दर्शन कुंभन दास ने किया। उतने में गोपी जगी और कौन है करके आई, तो तुरंत भगवान वहां से छत से ही भाग गए और मिले कौन, कुंभन दास। ऐसा पीटा उसको, ऐसा पीटा, और ये पुकार रहे, अरे पुकार रहे, सिन्हनाथ जी गोपाल जी मैंने कहा था तुम तो भागते हो, मैं पीटा जाता हूं देखो, और भगवान ऊपर से आप भी ताली बजाओ बजाओ बजाओ, ऐसे ताली पीट कर भगवान हंस रहे हैं। फिर आते हैं कैसे बजे छूट कर अपने आप को, बोले तुम हमेशा ऐसे करते हो ना, उसमें बड़ा मुझे आनंद आता है, जब तुम पीटते हो पीटे जाते हो तो मुझे बड़ा खुशी होती है। लेकिन कुंभन दास जी उस चतुर्भुज दर्शन से इतने प्रभावित थे, इतना उनका चेतना ध्यान आत्मा पूरा छा गया था उसके प्रदर्शन, वो उसके बाद वो घर गए तो उनकी पत्नी गर्भवती हो गई, और जब बच्चा पैदा हुआ, पुत्र पैदा हुआ, तो उन्हें पुत्र का नाम लिखा चतुर्भुज दास। वो कौन थे, विष्णु नहीं थे, वो स्वयं कृष्ण, जिनका दर्शन उन्होंने उस रात को किया था, जिनके कंधे से दो और हाथ निकले थे, वो चतुर्भुज को याद करते हुए उन्होंने अपने बालक का नाम रखा। हरे कृष्णा। तो इस तरह से हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी की कृपा से अलालनाथ का क्षेत्र प्रविष्ट वन से पैठा जगह से अलग नहीं है, ये रहस्य उन्होंने वहां पर प्रकट किया। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद की, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। ललनाथ भगवान की, साक्षी गोपाल भगवान की, गोपाल, हे गोपाल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।